नमस्ते दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं सोनू इंडिया के ये एपिसोड में। आज की विषय है वर्ण व्यवस्था और जातिवाद। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रामनिवास भैया।
धन्यवाद सोनू। आज का विषय वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, जो एक विवादित विषय बनकर रह गया है। वास्तव में ये विवादित विषय नहीं है, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। प्रणाम श्रोतागण, मैं रामनिवास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है वर्ण व्यवस्था और जातिवाद। मेरे साथ हैं सोनू इस विषय में बात करने के लिए। सोनू
जी भैया, आज हमें बताइए कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ और वर्तमान स्थिति इसका क्या है।
वर्ण व्यवस्था क्या है पहले ये जान लेते हैं। वर्ण व्यवस्था एक प्रणाली है जो समाज का संचालन करती है। समाज का संचालन करने के लिए इसका गठन हुआ है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुआ है। वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति के विषय में सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। उसमें कहा गया है, पहला सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत, एक विराट पुरुष यानी ब्रह्मा भी कह सकते हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ, उदर यानी पेट भी कहते हैं उसे, उससे वैश्य का उत्पत्ति हुआ और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ। दूसरा सिद्धांत है रंग का सिद्धांत। ये भृगु का में मिलता है, भृगु के ग्रंथ में मिलता है। उनके अनुसार श्वेत वर्ण का ब्राह्मण, लोहित वर्ण का क्षत्रिय, पीत वर्ण का वैश्य, असित वर्ण का शूद्र। ये इसे सभी नहीं मानते। और तीसरा सिद्धांत है धर्म कर्म का सिद्धांत। धर्म कर्म का सिद्धांत अर्थात जो जैसा कर्म करेगा वो उस वर्ण का। जैसे कोई अध्ययन, पूजा पाठ, ज्ञान विज्ञान का काम करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो शासन रक्षा संबंधी कार्य करता है वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यवसाय संबंधी कार्य करे, कृषि पशुपालन, वो वैश्य कहलाएगा। और जो सेवा संबंधी कार्य करे, विशेषकर जो शूद्र होते थे, वो इन तीनों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, सेवा संबंधी के लिए थे। और चौथा सिद्धांत होता है गुण का सिद्धांत। गुण का सिद्धांत इस प्रकार है, जो ब्राह्मण हैं उनके कुछ गुण हैं, गुण निर्धारित किए गए हैं। जो क्षत्रिय हैं उनके कुछ गुण हैं, जो वैश्य हैं उनके, और जो शूद्र हैं उनके कुछ। ब्राह्मण के गुण इस प्रकार हैं, ब्राह्मण के 9 गुण कहे गए हैं। पहला है सम यानी अंतकरण या मन कह सकते हैं, मन का वश में करना। जो ब्राह्मण होगा वो मन को वश में करेगा। दूसरा दम यानी इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में करना। अगर इंद्रियां अपने वश में नहीं है तो वो भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण का एक गुण है। तीसरा तप, वाणी और मन को तप कर शुद्ध करना। जो ब्राह्मण हैं उनकी वाणी मधुर होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, धर्म के लिए कष्ट सहने वाला होना चाहिए। चौथा सोच, भीतर बाहर से शुद्ध रहना। पांचवा शांति, दूसरों को क्षमा करना। ये ब्राह्मण के गुण है। छठा गुण है अजर्व, निष्कपट भाव से अजर्व करना। सातवां ज्ञान, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना तथा ज्ञान कराना या शिक्षा देना जो कह सकते हैं। आठवां विज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान करना, आत्मज्ञान होना, अनुभव करना, उत्पत्ति संबंधी कार्य करना, ये है ब्राह्मण का एक गुण। नौवां गुण है वेद शास्त्र ईश्वर आदि पर श्रद्धा रखना। अब बात करते हैं क्षत्रिय का क्या गुण होते हैं। क्षत्रिय वो है जिनमें ये गुण होने चाहिए। पहला शौर्य यानी शूरवीरता होनी चाहिए उनमें। दूसरा तेज यानी तेजस्वी होनी चाहिए। तीसरा धुति यानी धैर्य होनी चाहिए। चौथा दक्षता, प्रजा के संचालन आदि के विषय में चतुरता, जैसे शासन करने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा युद्ध से पलायन ना करे, युद्ध में पीठ ना दिखाए। छठा दान, जो क्षत्रिय है वो दान पुण्य करने वाला होना चाहिए। सातवा ईश्वर भाव या स्वामी भाव, शासन के भाव होना चाहिए उनमें, स्वामी भाव होना चाहिए। अब बात करते हैं वैश्य की गुणों के विषय में कहा गया है उत्पत्ति संबंधी और वितरण करना, जो गुण जिसमें होंगे वो वैश्य कहलाएंगे। और चौथा हो गया हमारे शूद्र। शूद्र के गुण के बताए गए हैं परिचार्य अर्थात सेवा, निष्काम भाव से सेवा करना। ये हुए हमारे गुण संबंधी।
जी भैया, आपने कहा वर्ण व्यवस्था के विषय में, अब मुझे जानना है ये जातिवाद में कैसे परिवर्तित हो गया और छुआछूत भेदभाव कैसे जन्म लिए इस समाज में।
हाँ, इस विषय में बहुत लंबी बात है, मैं आपको प्रारंभ से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि प्रारंभ में सभी ब्राह्मण थे, आवश्यकता अनुसार चार वर्णों का जन्म हुआ, आवश्यकता पड़ी व्यवसाय की, लोगों ने व्यवसाय को चुना, कईयों ने रक्षा संबंधी कार्य चुना, कईयों ने इनके सेवा कार्य चुना, तो शूद्र कहना है। जो ये तो जो व्यवसाय संबंधी कार्य चुना वो वैश्य कला है। उस समय क्या होता, जब प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, उस समय क्या होता था, जैसा गुण है जो जैसा कार्य वो उसमें, जो कोई अगर शूद्र है तो वो चाहे उसके अपने बेटे को शिक्षा दे के वो अपना पीढ़ी को ब्राह्मण भी बना सकता है, बन सकता है, उस अपना इच्छा स्वइच्छा पर निर्भर था। कोई क्षत्रिय है, अगर उसका बेटा दो है, कोई एक लड़ना माने अपने क्षत्रिय का ही गुण उसमें है और दूसरा में ब्राह्मण के, तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है शिक्षा लेकर। जो जैसे माने कहने का अर्थ ये है, उस समय ऐसा था कि कोई भी वर्ण का क्यों ना हो वो दूसरे वर्ण में जा सकता है अपने कर्म और अपने इसके विषय में, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। अब इसका
ये अगर भेदभाव नहीं था तो अगर उस समय इंसान इतना अच्छे थे कि ये कार्य खुद से चुन लेते थे कि मुझे ये करना है या वो करना है।
हाँ, पहले ऐसे ही था सभी को अपना ये में। फिर आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के ऐसा हुआ, विस्तार बढ़ते गया, कर्म का विस्तार। एक कर्म था ब्राह्मण का, उसमें चार हुआ, अब वो चारों का प्रत्येक एक एक वर्ण का विस्तार होते गया। जैसे वैश्य वर्ण को पकड़ लीजिए, वैश्य वर्ण में पहले कृषि गोपालन और वाणिज्य करते थे, अब उसमें वाणिज्य में विस्तार होने लगा, कोई सोने का काम करने लगा, कोई लोहे का, कोई कपड़े का, तरह तरह के काम करने लगे। उस हिसाब से अब उनको इंडिकेट करने के लिए एक एक जाति का उत्पत्ति होने लगा। ठीक है, उस समय भी आप जो कर्म आप करेंगे उसमें परिवर्तित हो सकते थे, पर अब उस समय का हालात को समझने की कोशिश करिए। शिक्षा के लिए कोई स्कूल व्यवस्था नहीं था। अगर मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है तो ब्राह्मण के घर में रहकर वो पढ़ता था, वो 4-5 साल में चला जाएगा, उसका उपनयन संस्कार होगा और वो दीक्षा ग्रहण करेगा और वो 20-25 साल के बाद वो शिक्षित होकर आएगा। ऐसा स्थिति था। और मेरे गांव से 4-5 गांव दूर हो सकता है, उसी गांव में हो सकता है, और भी दूर हो सकता है जहाँ पे वो पढ़ने जा सके। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा इतना सुलभ नहीं था जैसे आज के दिन में है।
कि मतलब इधर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब गाड़ी व्यवस्था भी नहीं था कि आने जाने में सुविधा हो, जो भी वहाँ के जहाँ विद्यालय हुआ करते थे।
विद्यालय होते ही नहीं थे।
अच्छा, क्या
होता था? विद्यालय नहीं होते थे प्रारंभ में, गुरु के घर में जाके ही शिक्षा लेते थे। विद्यालय सब बहुत बाद में आया।
अच्छा।
जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो भिक्षा के अन्न लेकर वही उनका खाना होता था और दान के वस्त्र पहनते थे, और वो भिक्षा मांगने वाला कोई और नहीं, उनके ही विद्यार्थी होते थे।
अच्छा।
जो किसी भी वर्ण से हो सकते हैं, उनका खुद का बेटा हो सकता है या फिर क्षत्रिय का बेटा हो सकता है या फिर वैश्य या शूद्र, वो उनके पास जो शिक्षा लेने के लिए आए वो उनको शिक्षा के साथ साथ माने अपने ये भी सिखाया, माने दिया जाता ताकि आप भिक्षा मान कर, ये उनका एक था। तो उस समय परिस्थिति ये था कि अगर आपको सीखना है, शिक्षा लेना है, तो 4-5 गांव दूर जाना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा
सीखा जाता था
वेदांत,
वेदांत की शिक्षा। हाँ, क्या मतलब सीखते क्या थे, कि ये कौन सा वर्ण में जाना है ये सीखते थे, या आगे का जीवन कैसे कटाना है ये सीखते थे?
नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। वेदांत, वेदांत की शिक्षा जो हमारे वेद में है, उपनिषद हैं, इनकी शिक्षा, उसमें सारा सबूक सभी कुछ है। वेदांत अगर वेद की अगर शिक्षा करें तो उसमें हर एक सभी कुछ है। उसमें अर्थशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, हर एक चीज़ है उसमें। मैंने जीवन कैसे प्रारंभ से अंत तक कैसे जीना है, वेदों में सब कुछ उपलब्ध है। अगर कोई वेद का पूरे से अध्ययन कर चुका है तो वो सभी कुछ जानता है।
अच्छा।
ऐसा उसके बाद आप चुनाव कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। ऐसा
तो ये सिचुएशन जब चल रहा था, सभी जो विद्यार्थी जाते थे उनके गुरु के पास, यानी जो भी उनके शिक्षक हैं या गुरु हैं, ये जब सीख रहे थे ये सारा चीज, उस समय तक भेदभाव नहीं था?
नहीं, नहीं।
इसमें कोई भी वर्ण का व्यक्ति जाके ये शिक्षा ग्रहण कर सकता था?
प्रारंभ में ऐसे ही था, प्रारंभ में ऐसे ही था कि कोई भी किसी वर्ण का हो वो जाकर शिक्षा कर सकता था। अब आस्ते आस्ते विस्तार बढ़ते गया। विस्तार बढ़ते जाने के कारण क्या हुआ, अब जाना पड़ रहा है 4 गांव 5 गांव, जो कि सभी के लिए संभव नहीं था। किसी का एक बेटा है, अगर वो अपने बेटे को शिक्षा के लिए भेज देता तो उसके जीवन में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, वो नहीं उस तरह से नहीं चला सके। अब वो मान लीजिए एक कृषक है, कृषि खेतों में बहुत सारे काम होंगे, उनका एक बेटा या दो बेटा है, अगर उसको दोनों बेटा को अगर वो भेज दे पढ़ने के लिए तो उसका काम में कौन हाथ बटाए? तो वो और वो शिक्षा लेने के लिए 5 गांव या 10 गांव जाना पड़े। ऐसा तो लोगों ने क्या किया, अगर एक बेटा को भेज दिया तो दूसरा बेटा को अपने काम में लगा दिया कि तुम आगे चल के भी तो अगर कृषक ही चुनेंगे तो ये कर लो, साथ में हाथ बटा लो, कमाना ही है। इस तरह से होने लगे सभी में, माने फिर ये बढ़ता गया। जैसे 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 कि ऐसा परिस्थिति आने लगा, जैसे कि 10 गांव में 1 या 2 जगह है जो शिक्षा मिल रहा है, वहाँ जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या किए कि इसमें भी उत्पत्त उन, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ लिया, शिक्षक ही बन गया आगे चल के ब्राह्मण, तो उनका जीवन है, ब्राह्मण का जीवन बहुत दरिद्रता होती थी उस समय, क्योंकि उनको भिक्षा पर जीना था, भिक्षा पर जीना है और दान के वस्त्र पहनना है, और बहुत से उनका गुण है जो एकदम सादा जीवन जीने का होना है। तो सभी को, और इधर आप कृषक हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं या क्षत्रिय हैं, तो उनका जीवन उनसे बेहतर हुआ करता था।
अच्छा।
ठीक है, उनके पास ज़्यादा, हाँ सुख सुविधा था बेहतर। तो ये अपने बेटे लोग को होता है, पिता का अपना मोह पुत्र के प्रति, अपने बेटे लोग को फिर अपने काम में भी लगाने लगे कुछ ज़्यादातर केस में, कि आप यही सोने के व्यापार हैं तो आप सोने का ही काम करो, अच्छे अपना तुम्हारा जीवन कट जाएगा। वेद वेदांत आप सीखोगे उसके बाद ये सीखने जाओगे तो आपका तो जीवन ऐसे ही कट जाएगा, आप सीखोगे क्या, आप करोगे, क्योंकि आपको ये सोना के काम भी सीखने में आपको कई वर्ष लगेंगे। आप वेद वेदांत सीखने जाएंगे वहाँ 20-25 साल लग जाएंगे, फिर इसे सीखेंगे फिर करेंगे, अगर मान लीजिए आपको व्यवसाय करना है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो पिता अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किससे दे, विरासत में अपने पुत्र को ही दे सकता है, अपने पुत्र को देना शुरू किया और उसका शिक्षा वेदांत की ओर से कम हो गया, वो नहीं सीख पाया, ऐसा माहौल बनता गया, ये बढ़ता ही गया,
ठीक है, पीढ़ी
दर पीढ़ी बढ़ता ही गया। फिर बढ़ते बढ़ते ऐसा होना गया, अब समाज में दो हिस्सों में बढ़ गया, एक जो शिक्षित हैं जो वेदांत समझ रहे हैं सभी कुछ जान रहे हैं, और दूसरा वर्ग जो शक्तिशाली हो गया है उनके पास व्यवसाय है इस समय और वो वेदांत नहीं जानते, अशिक्षित हैं, पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, अर्धशिक्षित कह सकते हैं। अब इनमें ये जन्म होने लगा भेदभाव, अरे मैं सोने का व्यापार करता हूँ तो मैं तो ऊंचा हो गया और तुम तो लोहे का करते हो या फिर चमड़े का करते हो, चमार हो तो अब नीचे हो गए, या मैं क्षत्रिय हूँ मैं तो सबका ये कर शासक हूँ तो मैं बड़ा हूँ, ये सभी का इंसान में होता है जो अशिक्षित हैं। जो ब्रह्मज्ञानी है वेदांत ज्ञानी है वो ऐसा विचार नहीं रखते, लेकिन जो नहीं जानते ये आधा सीखे रहते हैं, उनका मन में ऐसा विचार आता है। ये बढ़ता गया और अपने बेटे को, बेटे के प्रति मोह भी था सभी को, ज़्यादातर ये अब बढ़ता चला गया कि अब मेरा व्यवसाय मेरा बेटा ही करते जाएगा, मैं उसको उत्तरदायित्व हूँ, और वो आसान भी होता है क्योंकि अगर मेरा जो भी काम है मुझसे वो बचपन से देखता आया सीखता आया, अगर वो सामने संभाले तो उसके लिए बहुत आसान होता है। जैसे आजकल के दिन में देखेंगे तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, वहाँ एक स्टार बोलते हैं ना, और स्टार के बेटे उनको मैंने फिल्म से फिल्म में आना बहुत उनके लिए आसान होता है, है ना, क्योंकि वो बचपन से ही अपने माता पिता को उसी हालत में देखे रहते हैं तो उनको कैमरा फेस करने में उतना तकलीफ नहीं होता, फटाफट हो जाता उनके लिए। लेकिन कोई बाहर से जाए तो उनको बहुत तकलीफ है क्योंकि क्या है सब कुछ नया नया, क्योंकि वो नहीं जानता। इसी तरह से उनको आसान होने लगा अपना पिता का ये संभालने के लिए काम वगैरह, नेपोटिज्म जो भी है वो सभी में होता है, जो आप उतना शिक्षित नहीं है कम है तो ये आएगा ही, क्योंकि आप वेदांत नहीं जानते हैं ये तो आपका ये आएगा ही। अब ये बढ़ता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, और इधर समाज का ही विस्तार होता गया, माने जाति व्यवस्था आने लगा कि मैं सोने का काम करता हूँ तो सोने का, अब मैं सोने का व्यवहार करता हूँ तो मेरा बेटा बेटी को लिए मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढूँ कि मैं वो भी सोने का करता हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं सोने का करता हूँ मैं अच्छा पैसा वाला हूँ,
रिश्तेदारी भी उसी,
हाँ अब उसी पर होने लगा क्योंकि मेरा धन है और मैं क्यों दूसरे को देने जाऊँ, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना धन है अगर मैं दूंगा तो अपने इसको देता हूँ अपने ही सोने वाले ये को, तब जातिवाद आस्ते आस्ते जन्म लेने लगा समाज में, ठीक है। अब फिर ये बढ़ता ही गया पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया, फिर ऐसा हो गया समाज में कि जन्म पे आधारित हो गया, जो
जिस घर में,
हाँ हाँ जो ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ तो वो उसमें ब्राह्मण का गुण हो ना हो वो ब्राह्मण ही कहलाने लगा, जो क्षत्रिय का घर में जन्म हुआ वो क्षत्रिय ही कहलाने लगा, जो वैश्य का घर में जन्म हुआ वो वैश्य कहलाने लगा। एक तरह से कहा जाए तो जो वन व्यवस्था का अंत होकर जातिवाद का प्रारंभ हो गया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी और दृढ़ होता गया और निष्ठुर, इतना निष्ठुर कि आप जिस जाति में हैं दूसरे जाति में आप विवाह नहीं कर रहे, वो आस्ते आस्ते बनता गया, और मानसिकता इस तरह होते गई कि मैं ऊंचा वो नीचा, लोग अशिक्षित हैं लोग आधा शिक्षित हैं, इस तरह से तो इस तरह का भेदभाव आने लगा, और इससे ब्राह्मण जो होते हैं वो है समाज का नेतृत्व करते हैं, उनको ज्ञान है सभी, ज़्यादातर ज्ञान ज्ञानी है, क्योंकि जो भी थे उस समय ब्राह्मण के लेते थे, उनको ज्ञान का सब कुछ ज़्यादा पता था इन बाकियों से। और जो दूसरा है क्षत्रिय, वो शासक थे, उनका पास अपना एक था रुतबा शासक होने का या फिर क्षत्रिय, उनका अपना काम था। जो वैश्य थे वो उनका अपना व्यवसाय था। अब नीचे थर्ड हो गया शूद्र, शूद्र जो थे उनका अपना काम नहीं था, वो दूसरे की सेवा करते थे। तो इनका आसानी से दमन करना प्रारंभ हुआ। अब वो जैसे आज का दिन में कहा जा सकता है, जो जितने भी नौकरी करते हैं उनको अगर नौकरी जो मालिक है कंपनी का वो आसानी से दबा सकता है, ए ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा करके तुमको नौकरी से निकाल देंगे, वो करके वो मालिक का बात सुन के या ये करके रहेगा। अगर मालिक बोल देगा इतना बजे तक आज करके जाओ तो वो करेगा, क्योंकि ऐसा वो स्थिति बन है आज भी सभी जगह में, क्योंकि वो उसका अंदर काम कर रहा है तो उसको उसको सुनना पड़ रहा है, दमन हो रहा है एक तरह से। वैसे उस समय भी हुआ था और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और समाज में उच्च नीच का भाव जन्म ले चुका था। और इस माने एक तरह से देखा जाए तो समाज इसको एक तो समझने का एक और तरीका है, जैसे कहा गया है हमारी गीता में मिलेगा इसका उल्लेख, आपको वेदों में मिलेगा, कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो एक विश्वा बोल के है, उस समय पुण्य या फिर सच कह सकते हैं वो 20 था, भाग किया गया 20 और पाप, हाँ 20 और पाप जो है वो शून्य,
जीरो 20 और जीरो।
जब कलयुग का विस्तार हुआ तो कलयुग के विषय में कैसा है कि एक राजा थे, वो आके दक्षित या कुछ ऐसे ही राजा का नाम था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। कलयुग आके उस राजा से मांगता है कि मुझे स्थान दीजिए आपका इसमें, जैसे कहानी है मैं बता रहा हूँ। तो राजा मना करते पहले, तो फिर किसी तरह से उसको स्थान मांगते हैं, तो बोलता है ठीक है, वो स्थान देते हैं कि आपको सोने में सोना गोल्ड, सोना में मदिरालय में जुआ वगैरह दारू, हाँ शराब का नाम वगैरह और जुआ वगैरह इसमें आपको स्थान दिए, माने आप जहाँ ये सब रहेगा वहाँ पे आपका विस्तार होता जाएगा। और ये वचन देने के बाद राजा का क्या है, राजा सर में सोने का मुकुट पहना होगा। कलयुग सबसे पहले उसके मुकुट पे बैठ गए, और उसके बाद आगे कहानी है उसमें मैं भी नहीं जाता, उसका बात कैसे विस्तार हुआ। बात यह है कि उस समय सत्य 20 था और 20 था और इधर जीरो पाप। तो और उस समय प्रारंभ में सभी ब्राह्मण थे समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका विस्तार होता है जैसे जैसे और सच का थोड़ा घटता है, तो 1 से 4 हो गया विस्तार होते होते, ठीक है। और इधर वो माने पाप या झूठ जो भी कहें या कलयुग वो विस्तार हो रहा है, और इधर हमारा ब्रह्म व्यवस्था भी विस्तार हो रहा है, दुनिया भी विस्तार हो रहा है। अब ये बढ़ के आ गया आपका पाप भी बढ़ गया बहुत और वर्ण व्यवस्था भी बहुत, वर्ण व्यवस्था का विस्तार हो गया, जातिवाद में कन्वर्ट हो गया, तो लोगों में उस तरह से पाप का भी स्थापना हो गया कि वो लोग पाप ही करेंगे जो भी है, वो उस तरह से आप समझ सकते हैं इसको लेके कि कैसे इसका विस्तार होता गया, कि छुआछूत भेदभाव कैसे बढ़ता गया दिन प्रतिदिन। इधर इधर से देखते जाइएगा तो उधर पाप भी बढ़ते जा रहा है, जैसे कहा गया है हमारे इसमें कि सतयुग में 20-0 हुआ करता था, माने सतयुग में पाप 0 था और सत्य 20 था। और जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में, त्रेता युग के अंत तक में 15 और 5 हो गया,
मतलब
पाप 5 हो गया, पुण्य 15 रहा। अब उसका विस्तार द्वापर युग खत्म होते होते 10 और 10 हो गया, हाँ 50-50। अब वो आगे बढ़ के हाँ कलयुग में जा रहा है जो कि 5 और 15 हो जाएगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। द्वापर युग का अंत अर्थात श्री कृष्ण का वो महाभारत के काल,
उस समय सब कुछ सब ठीक ही थे, उतना जातिवाद या ये नहीं था, उतना दृढ़ नहीं हुआ था, लेकिन था
धर्म जानता था।
हाँ, धर्म जानते थे सभी, उतना दृढ़ नहीं हुआ था। उसके बाद से आप देखते जाइए तो उसमें और छुआछूत ये सब और बढ़ता गया है मानसिकता ये लोगों का। तो आप इसमें से समझ सकते हैं कि कैसे ये बढ़ते गया है। तो इसको आज का समय में सभी कुप्रथा ही कहते हैं ऐसा भी है। और आज का स्थिति ये है कि जातिवाद उतना नहीं रहा कि जो मैंने हमारे भारत को स्वाधीनता होने के बाद से जब आधुनिक शिक्षा का जब लेने लगे सभी कोई, सभी शिक्षित होने लगे, उस समय क्या होता है एक टाइम में वंचित करने लगा गया, शूद्र को वंचित करने करा गया। जब वो जातिवाद में आ गया तो शूद्र को पूरा वंचित कर दिया गया शिक्षा से, और बाकियों को था कुछ कुछ, ब्राह्मण ही लेते थे और क्षत्रिय लेते थे, वैश्य को भी उतना नहीं था लेकिन था, और शूद्र को टोटली वंचित कर दिया गया था कि वो नहीं शिक्षा लेंगे, ऐसा दमन, वो पाप बढ़ रहा है वो ऐसे करते थे। अब हमारे स्वाधीनता के बाद से क्या हुआ, अभी सभी को समान से शिक्षा मिल रहा है। तो वर्तमान स्थिति ऐसा है कि अभी नाम मात्र रह गया है, अभी तो कोई भी मैंने ज़्यादातर देखने मिल रहा है कि शादी आप जाति छोड़ के इधर उधर कर ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जाति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं, काम कर रही है लेकिन उस तरह से नहीं काम कर रही, उस तरह दृढ़ता से नहीं है जो पहले किया करते थे। अभी समाज में देखने आपको आप हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा कि प्रेम विवाह से कोई दूसरे जात में या कोई दूसरे धर्म में विवाह किया हुआ ऐसा है। पहले वो आज से 30 साल पहले वो नहीं देखने को मिलता था, ऐसा होता था तो अगर कोई प्रेम विवाह करे तो उन्हें मार दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैंने अब आस्ते आस्ते ये कह सकते हैं कि आने वाले 10 या 20 वर्षों में जो भी है वो लगभग समाप्त सा हो जाएगा। छूत अछूत तो लगभग से समाप्त हो ही चुका है, अब तो देखने को नहीं मिलता है। गाँव व्यवस्था में अगर कुछ होंगे जो पुराने काल के लोग, वो भी कुछ जो मैंने बूढ़े लोग जो 70-80 वर्ष के होंगे वो मानते होंगे तो मानते होंगे, नहीं तो नए आज के जीवन के उतना लोग तो उतना नहीं ही मानते हैं, जहाँ तक मैंने तो आज तो नहीं देखा। अगर आपने कुछ देखा हो तो बता सकते हैं।
जी मैंने देखा है अभी भी, पर उतनी उतना बड़ा स्तर पे नहीं, बहुत कम लेवल पे मैंने ये छूत अछूत अभी भी देखा है, जो कि धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। अभी ये पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। एक्चुअली में ये मानसिकता है और कुछ नहीं, ये मानसिकता है जो कि अगर कोई आदमी शिक्षित हो जाए तो मानसिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, और कोई अगर अशिक्षित रहा, गलत काम में रहा, तो उसको कोई हटा नहीं सकता। उसका
अर्धशिक्षित जो रहेंगे वो ये सभी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अगर जो जो शिक्षित हैं, जो जानते ब्रह्म ज्ञानी होते थे, उनको पहला है कि मैंने वो एक ही ब्रह्म है, मैं जो हूँ आप भी वही हो, अहम ब्रह्मास्मि से ही उनका शुरुआत होता है, तत् तुम असि, दूसरा है जो उपनिषद में उल्लेख है ऐसा, तो वो सभी में एक देखते हैं। तो वो छुआछूत के बारे में सोच भी नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, उनको सभी बराबर हैं। और जो नहीं जानते हैं, अर्धशिक्षित हैं, उनको अनुभव नहीं है सभी में एक हैं कह के, उनने सुने हैं कि हाँ ब्रह्मा भगवान है, कि हम एक हैं, आप में भी वही है, हम सब एक हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं है उनको, वो उनको अनुभव नहीं किया है, तो वो कभी मानेंगे नहीं, ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। जो अनुभव करते हैं वो कभी छुआछूत और ये सब नहीं करेंगे, ऐसा है।
बहुत कुछ बताएं हमें, ये वर्ण व्यवस्था कैसे जातिवाद में कन्वर्ट हो गया, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग का दर्शक सभी समझे होंगे इस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हिंदू धर्म में ही माना गया है, क्या अलग धर्म में भी वर्ण व्यवस्था होते हैं?
अलग धर्म में अपना है वो वर्ण व्यवस्था नाम नहीं है, लेकिन जैसे कि आप इस्लाम को ले लीजिए, उनका में भी 3-4 है, जैसे कि पठान, सिया, सुन्नी, अलग अलग ऐसा है, उनका में भी विभाजित है समाज में अलग अलग करके उस तरह से।
तो और जैसे उनका में छुआछूत होता है?
छुआछूत सभी में है, वो मानसिकता सभी में, जैसे आप देख लीजिए हमारे देश में जाति को लेकर छुआछूत कैसे सुन रहे हैं, आप विदेशों में सुनेंगे तो अमीरी गरीबी में है, हैं, रंग के आधार पे है, गोरा काला करके हैं, तरह तरह के हैं, ये सभी मानसिकता में आज आप किसी कंपनी में देख लीजिए काम कर रहे हैं, मैंने छुआछूत तक तो नहीं कहूँगा लेकिन वो भेदभाव है। एक मैनेजर लेवल या जीएम लेवल का जो ऑफिसर है या फिर कार्यकर्ता है, कार्यकारी हैं जो मैनेजर हैं, वो एक निचला स्तर का जो मजदूर होगा उसके साथ नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, साथ में बैठेगा भी नहीं। वो बैठने भी जाएगा तो एक दिखावा होगा उसके पास कि वो प्रपंच होगा कि मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ ऐसा करके, लेकिन उसका आंतरिक मन से नहीं होगा कि मैं आपके साथ बैठूं या उठूं। वहाँ भी है छुआछूत एक तरह से, वो क्योंकि लोगों का मानसिकता वैसे ही है सभी जगह, मैंने उसे बदलने के लिए आपको दर्शन पर अध्ययन करना होगा तभी आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि सभी में एक देख सकते हैं। अगर दर्शन पर अध्ययन नहीं होगा तो आप जो भी पढ़ लें वो तो रहेगा ही, ये में छुआछूत भेदभाव, छुआछूत तो नहीं बोलेंगे कि वो छुआछूत की तरह कर दे रहा, वो तो अति हो गया है, लेकिन भेदभाव तो है ही। तो ये उदाहरण भी है, मैं आपको बता देता हूँ जिसका एक उदाहरण है कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए हमारे शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली को हम विषय में बांटे हैं, विषय को अध्याय में बांटा गया है, चैप्टर अध्याय को पाठ में लेसन बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? ये इसलिए बांटा गया है क्योंकि इसको पढ़ाने में और पढ़ने में आसानी हो सके, है ना। फिर अब कोई विद्यार्थी वो क्या करता है, अपने एग्जाम को दृष्टि रख में, मतलब परीक्षा को दृष्टिकोण में रखकर उसी को पढ़ता है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है, और उसे कम पढ़ता है या नहीं पढ़ता है जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं कम है, तो वो अपने ही शिक्षा के साथ, अपने ही पढ़ाई के साथ भेदभाव कर रहा है ना। जबकि वो तो पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर आपको दिया गया किताब, लेकिन आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक तो अपना लाभ देख रहे हैं कि मैं
एग्जाम में क्या
है? हाँ, परीक्षा में क्या आएगा, अपना लाभ ही है ना, अपना लाभ देख रहे हैं, या फिर कुछ अपना मानसिकता बैठा लिया उस तरह से कि एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बाकी नहीं है, तो आपका मानसिकता ये है, आपका मानसिकता का दोष है इसमें, शिक्षा प्रणाली को आप दोषी नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह है वन व्यवस्था, वन व्यवस्था को इसके लिए आप दोषी नहीं दे सकते, आपका लोगों का मानसिकता उस तरह से खराब हो चुका है कि ये ऊँच है ये नीच है, मैं ये हूँ वो हूँ, जैसे पढ़ाई में ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये चैप्टर आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, ये आएंगे ही, ये तो पूछे नहीं जाते, ये तो मानसिकता का दोष है। लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको पूरा पढ़ना है, तभी नहीं आप शिक्षित होंगे, नहीं तो आप तो सिर्फ नंबर ही ला पाएंगे, शिक्षित तो नहीं होंगे, बस यही है वन व्यवस्था।
बहुत ही अच्छा सुंदर सा उदाहरण दे के आप समझाएं, मुझे पूरी तरह से समझ आ गया, आशा करता हूँ हमारे श्रोता को भी सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब बताइए ये वन व्यवस्था को लेके राजनीति कैसे किया गया, राजनीतिक दल कैसे इसका लाभ उठाने लगे?
वन व्यवस्था को लेकर जातिवाद में सभी जगह में, जैसे जो ऊंच है जो शक्तिशाली है जिसके पास सत्ता है वो तो इसका लाभ उठाते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील चीज़ है। जैसे कि आप किसी को, किसी के जाति के प्रति आसानी से भड़काया जा सकता है कि आपका जाति के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आप उस तरह का मानसिकता बना के बैठे हैं आपका ये कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, आसानी से भड़काया जा सकता है। तो इससे जो राजनेता होते हैं उनसे लाभ उठाने के लिए उनको ये जाति उसे किसी से कोई सद्भावना नहीं होता, कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें सिर्फ अपना सत्ता का ही लोभ होता है, उसी से ही फायदा, वो देखते हैं अगर सामने वाला लड़ता है मरता है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं, उनको अपना लाभ होना चाहिए, ये देखते हैं। तो वो आदिकाल से ही ऐसा चलते आ रहा है जो आपस में लड़ाता ये करना जब से ये, और आज के दिनों में आप देख सकते हैं धर्म के लिए जगह जगह दंगे हो रहे हैं। अभी एक आपको मिल जाएगा जीता जागता उदाहरण, अभी जय भीम नाम करके जो विस्तार हो रहा है, ये भी एकदम जातिवाद को लेकर, जो कि ऐसा चीज़ है जो अतीत में घटा था, बहुत छुआछूत ये सब जो कि बहुत दृढ़ था वो सरासर गलत था, लेकिन वो आज उसी को लेके अपने आप को, हाँ, राजनीति करेंगे, अपने आप को पीड़ित बताएंगे, जबकि उनके साथ कभी स्कूलों में या कॉलेज में कहीं पे भी उसका कुछ भेदभाव नहीं हुआ होगा, अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे होंगे, वो साथ में रह के पढ़े होंगे, उनका खुद का दोस्त ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो किसी भी दुकान में जाकर वो किसी भी, वो अपना जीवन में कभी भी नहीं, मैंने वो फेस नहीं किया होगा किसी भी तरह का कोई छुआछूत, पर वो खुद को पीड़ित बताएगा कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ है, इस तरह से राजनीति, उनको ये सबसे मतलब नहीं है कि था वो था, वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन उनको इससे राजनीतिक लाभ उठाना है, इसलिए वो इस तरह से करते हैं।
कैसे उसी एक कैटेगरी के जितने वोट उनके प्रति अपने ये करेंगे, उनके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे उनके, और उनको एक पूरी जाति के तरफ से कैसे वोट मिल सके, अगर वो इसी जाति को बात किए तो, अगर अलग कोई कोई जाति का है, अगर अलग कोई पार्टी तो उसमें फिर से अलग किया जा सकता है, तो ऐसे करके हुआ होगा।
सबसे आजकल वोट का खेल है, आप अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसको वोट से मतलब, अगर वो आप अच्छा भी काम करता है, अगर उसको आगे आने वाले समय वोट नहीं मिलता है तो अच्छा काम नहीं कर सकता आने वाले में, अगर वो सत्ता में रहेगा तो ही अच्छा काम करेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा, अगर कोई अच्छा करके सोच के भी गया है तो भी, तो अच्छा कर, सबसे पहला है आपको करना है तो वोट चाहिए, अब वोट करने के लिए उन्हें राजनीति भी करना पड़ता है उनको इस तरह से, ऐसा है।
कैसे ये राजनीति वाले लोग कैलकुलेट करते होंगे कि इतना परसेंट ब्राह्मण है ये मेरे, ये उनको वोट देंगे, ये क्षेत्रीय है ये इनको वोट देंगे, ये जाति का है वो उनको वोट देंगे, ऐसे वो कैलकुलेट करते होंगे क्या?
हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से माहौल बना के रखते हैं, विशेषकर अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लेंगे, वहाँ पे और बिहार में जाति के आधारित पर ही माने निर्वाचन हो जाता है कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा, ऐसा वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में, यहाँ पे जातिवाद चरम सीमा पे है कह सकते हैं आज का डेट में, जितना भी बहुत है वहाँ पे, अगर आप अच्छा काम कर लीजिए वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर उस के जाति का हैं तो ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा सिचुएशन उस तरफ में। अब लेकिन आस्ते आस्ते वो घटते जा रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो जाति से ऊपर निकल रहे हैं, काम देख रहे हैं कि काम जो अच्छा करेगा, जो मुझे मूलभूत सुविधाएं देंगे उन्हें ही वोट करना है, या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन जैसे लोग समझ रहे हैं वैसे नेता भी समझ रहे हैं कि अब इनको कैसे भटकाना है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्रारंभ से चलते आ रहा है, एक को भटकाना, जैसे चोर और सिपाही का, चोर थोड़ा अपडेट हो जाता है तो सिपाही को भी अपडेट होना पड़ता है, इसी तरह का ये है, अगर जनता समझने लग जाते हैं कि अब जातिवाद नहीं चलेगा तो दूसरा मुद्दा उठा के ले आएंगे, धर्म के ऊपर में ले आएंगे, ऐसा
अच्छा रहा ये भी। अच्छा आप अब बता, अपना तरफ से ये बताइए कि इस जातिवाद को कैसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, आप अपना व्यू दे सकते हैं इसमें कि नॉर्मली कैसे ये पूरी तरह से समाप्त हो सकता है।
जातिवाद पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, ये मुझे कुछ मामला में उसका कोई भी चीज पूरी तरह से खराब नहीं होता कि पूरी तरह से सही नहीं होता, इसके कुछ कुछ अच्छे गुण हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि वो गुण खराब हो, और कुछ कुछ गुण जो है जो आपका छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव ये तो टोटली समाप्त होना चाहिए, और बाकी जो ऐसे कुछ कुछ हैं जो व्यवस्थित किया गया है समाज जो भी है संचालन करने के लिए वो मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि उससे एक संचालन का एक प्रक्रिया है कि वो इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से है, समझ में आ जाता है कि आपका ये है तो आपका ये मूल इस तरह से एक तो क्या करें एक एड्रेस्ड है, एक आदमी आपको बताएगा कि आप यहाँ हैं तो आप कौन हैं क्या है कि एड्रेस भी पता चलता है कि आप ये हैं कह के, लेकिन इससे भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है कहकर, आपत्ति सिर्फ इसमें है कि लोग एक दूसरे को नीचा ऊंचा भेदभाव ये सब ना करें, सभी को सम्मान मिले, सभी को सम्मान शिक्षा, सभी को सम्मान चिकित्सा, ये सब में बराबर होना चाहिए, और बाकी जो है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ में प्रणाली में शिक्षा व्यवस्था हो कोई भी चीज़ में उसका सदुपयोग भी है दुरुपयोग भी है, अगर आप सही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर उसको आप गलत तरीका से उपयोग कर रहे हैं तो फिर बुराई हो गया। अब ऐसा कोई भी व्यवस्था निकाल लीजिए, अगर मान लीजिए वर्ण व्यवस्था या जातिवाद जो भी उसको हटा दीजिए, तो उसके जगह में क्या रखेंगे? कुछ भी करेंगे उसमें भी लोग कुछ ना कुछ करके निकालेंगे। जैसे आप नियम बनाते जाइए तो नियम तोड़ने वाले भी तैयार रहते हैं, तो जितना आप शक्ति बढ़ाते जाएंगे उधर से भी होते जाएगा। इसको रोकना अभी का टाइम में, जैसे हम मैंने कहा आपको बीसवा जो उसके विषय में, नहीं लगता कि अब रुकने वाला है ये, ठीक है, वो अंत हो की ओर ही बढ़ रहा है। आप जितना भी प्रयास कर लीजिए ये रुकने वाला नहीं है। उसके विषय में मैं आपको और किसी वीडियो में चर्चा करूँ, बताऊँगा कि वो क्या है कल की व्यवस्था के विषय में।
अच्छा, एक सिंपल सा एक सवाल है, आप इंटरकास्ट मैरिज में सहमति रखते हैं?
अंतर जातीय विवाह में, अपने जाति में, हाँ, अगर उसमें कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है, आपका जाति में है, उसमें क्या होता है अंतर जातीय विवाह में, जैसे हमारे क्या है, हर एक परिवार का, हर एक जाति का अपना अपना, हमारा समाज इस तरह से विकसित है कि उनका अपना अपना कुल देवता या फिर एक पद्धति है जीवन का। हमारा भारत, हमारा एक भारत क्या है, विभिन्नता में एकता क्यों कहते हैं, हर एक का अलग अलग है, छोटा छोटा आपको मिलेगा। तो जैसे हर एक जाति में कुछ ये है, उसमें दूसरा कुछ है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो आप उसी जाति में अगर कर रहे हैं तो सामने उसको आपके घर में ढलने में आसानी होगा, आपका रीति रिवाज सब कुछ समझने में, सब कुछ उसको आसानी से समझ जाएगा, उसको महीने एक डेढ़ महीने में सारा कुछ समझ जाएगा, क्योंकि वो अपना घर में भी वही देख रहा था और यहाँ भी वही देख रहा है, तो उसको आसानी से समझ जाएगा। मान लीजिए आप इससे दूसरे में जा रहे हैं तो आपको समझने में कठिन होगा, आपको थोड़ा प्रारंभ में परेशानी होगा, क्या कैसे है क्या नहीं, हमारा तो ऐसा होता था, वहाँ पे ऐसे हो रहा है, कैसे करना है, उसमें ढल पाएगा नहीं ढल पाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टिक भी सकता है नहीं भी टिक सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप जो घर में देखे हैं वहाँ पे वही है, तो आपको दिक्कत नहीं, आप तुरंत से संभाल सकते हैं घर को और आसानी से सबसे घुल मिल सकते हैं, क्योंकि आपको आसानी होगा, सब कुछ आप बचपन से यही देख रहे हैं, और थोड़ा सा घर का जो व्यवस्था वो सबको समझना है बस, वो हफ्ता भर में महीना भर में आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, आप टोटली जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लड़की शादी करके दूसरे घर में गया उसको, उसके लिए टोटली जीरो हो जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज छोड़ के अदर कास्ट में करता है, तो अदर कास्ट में करता है तो उसके लिए टोटली जीरो हो जाएगा, वो उसको प्रारंभ से सीखना पड़ेगा, उसको एक साल दो साल तीन साल भी लग सकता है सब कुछ समझने सीखने में, वो कितना सीख समझ सकता है वो बोलना मुश्किल है, फिर वो आने वाला पीढ़ी को क्या देगा वो भी और हरास होगा, ठीक है। तो इस व्यवस्था में इंटरकास्ट मैरिज सही है, लेकिन अभी तो मोह का जमाना है तो वो तो किधर भी जा सकता है, तो इसमें अगर रिलीजन भी चेंज हो जाता है, तो इस तरह से अगर कोई करता भी है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अदर कास्ट में करता तो कोई आपत्ति होता है, वो थोड़ा परेशानी होता है, पर वो अगर दोनों में अच्छा सहमति है, दोनों में प्रेम भाव अच्छा है, तो चल जाता है, ढल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं, आप चाहे तो इंटर कास्ट करिए चाहे अदर कास्ट करिए, मेरे को दोनों में सहमति ओके है, कोई ये दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों मिल के मेन असली मतलब सही बात यह है कि आपको आगे पीढ़ी को सही से पढ़ाना है। अगर आप अदर कास्ट में करते हैं तो आपका जो जो परंपरा से चलते आ रहे हो परंपरा में थोड़ा सा बाधा पहुंचता है, वो उसको सीखने में आगे अपने परंपरा को आगे विस्तार करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप अंतर जाति करते हैं तो वो आसानी से आपका परंपरा आगे बढ़ सकता है, विरासत में आप अपने बेटे को दे सकते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा भैया, आप बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे के सारे चीज़ समझाएं। अब आखिरी सवाल छोटा सा, आप इसको मार्क कैसे देंगे? अगर अभी 2020 चल रहा है तो ये 21वीं सदी में जातिवाद 10 में से कितना नंबर रखता है?
देखिए अभी तो अंत के ओर आ गया है इसका भी सब, जैसे किसी का भी प्रारंभ, जैसे वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुआ था 1 से 4, उसका फिर अंत हुआ, वो जातिवाद में परिवर्तित हो गया, जातिवाद का आरंभ हुआ, अब जातिवाद का अंत के ओर आ रहा है, तो ये तो अब अंत ही है, अब कुछ तो रहा नहीं इसमें, आप नंबर क्या दे सकते हैं इसमें?
10 में से कितना?
मैं जातिवाद को मैं नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे जातिवाद से ज़्यादा बेहतर मुझे वर्ण व्यवस्था लगता है, जो जिसे आपका योग्यता है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं।
10 में से कितना घटा है?
10 में से कितना घटा है, मैं इसे 3-4 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता।
अच्छा।
क्योंकि मुझे जातिवाद में उतना आस्था नहीं है जितना मुझे वर्ण व्यवस्था पे थी, क्योंकि आप में अगर काबिलियत है युद्ध करने का या रक्षा संबंधी करने का तो आप कर सकते हैं, आप जातिवाद में क्या होता है, आपके जन्म के आधारित हैं। आप अगर शूद्र में जन्म हुए, आप में काबिलियत हो तो भी आप नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। मैं वैश्य में जन्म हूँ, मुझे अगर ब्राह्मण या वेद वेदांत सीखना है, मैं नहीं सीख सकता या कोई शूद्र नहीं सीख सकता, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे नंबर नहीं दूंगा, पर वर्ण व्यवस्था में मैं पर 10 से 10 देने के लिए तैयार हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद रमणीवास भैया, हमारे श्रोता सभी को इतने इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने के लिए। और आखिर में आपको हमारी श्रोताओं की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को धन्यवाद। आपको कैसा लगा, कुछ छूट गया है या फिर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम इस पर और बेहतर करके आपको समझा सकने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों, मैं सोनू आप सभी को धन्यवाद देता हूं अंत तक इस एपिसोड में बने रहने के लिए। मैं एंकर ऐप यूज करता हूं। एंकर ऐप बहुत अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है। कोई भी पॉडकास्ट करने के लिए आप सोलो भी कर सकते हैं, डुएट भी कर सकते हैं, और एंकर ऐप 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। आप एक ही बार एंकर ऐप में पॉडकास्ट रेडी करके बहुत से प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिकली सप्लाई कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए, और तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए।